नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 29 अक्टूबर 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन से ठीक पहले महासचिव की चेतावनी, बैठक के विफल होने का गंभीर जोखिम, महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई का आह्वान। एशियाई देशों में पिछले साल चरम मौसम की घटनाओं से हजारों लोगों की मौत, भारी आर्थिक नुकसान। कोविड-19 का खात्मा करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम को अब भी अरबों डॉलर की जरूरत। वैश्विक महामारी के कारण अनुमान से कहीं ज्यादा रोजगारों और कामकाजी घंटों का नुकसान। अफगानिस्तान संकट पर सम्मेलन, मजबूत संकल्प के साथ त्वरित कार्रवाई का आग्रह। अब समाचार विस्तार से। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र का 26वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP26 हो रहा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश इस सम्मेलन से ठीक पहले G20 समूह की बैठक में शामिल होने के लिए इटली की राजधानी रोम में हैं। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए जलवायु एजेंडा और भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक चेतावनी जारी की।
There is a serious risk that Glasgow will not deliver. Several recent climate announcements might leave the impression of a rosier picture. Unfortunately, this is an illusion.
महासचिव गुटेरेश आगाह कर रहे थे कि ग्लासगो में वार्ता के विफल हो जाने का गंभीर जोखिम है। हाल के समय में अनेक जलवायु घोषणाओं से एक सुखद तस्वीर उभरती नजर आ सकती है, मगर ये भ्रम है। इसी सप्ताह यूएन की पर्यावरण एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जो दर्शाती है कि जलवायु कार्रवाई के मौजूदा संकल्प पेरिस जलवायु समझौते में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया इस सदी में वैश्विक तापमान में कम से कम 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की ओर बढ़ रही है। वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक नए अध्ययन के अनुसार वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये रुझान 2021 में भी जारी है। तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में 55% की कटौती की आवश्यकता बताई गई है, मगर देशों की जलवायु कार्रवाई योजनाओं में संशोधन के बावजूद फिलहाल 7.5% की ही अतिरिक्त गिरावट होती नजर आ रही है। इसके मद्देनजर यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि वास्तविक सफलता के लिए ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखानी होगी और ज्यादा कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो दुनिया वैश्विक तापमान में एक विनाशकारी वृद्धि की ओर बढ़ रही है। आपको याद दिलाते चलें कि यूएन न्यूज की टीम ने जलवायु संकट और COP26 सम्मेलन पर विस्तृत और नवीनतम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए विशेष सामग्री तैयार की है। यहां आपको COP26 सम्मेलन पर एक क्विज, जलवायु परिवर्तन से जुड़े बुनियादी तथ्य, शब्दावली और अनेक अन्य रिपोर्टें नजर आएंगी। पता है news.un.org/hi। चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से एशियाई देशों में पिछले साल हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों विस्थापित हुए और सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और उसके साझेदार संगठनों ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की हानि के साथ साथ बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्रों पर भीषण असर का आकलन किया गया है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
वर्ष 2020 में बाढ़ और तूफान की घटनाओं में एशिया में करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकाऊ विकास पर खतरा मंडरा रहा है। खाद्य व जल असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरण क्षरण उभार पर हैं। साथ ही रिपोर्ट में एक ऐसे वर्ष में सामाजिक आर्थिक प्रभावों का आकलन किया गया है जब एशियाई देशों को कोविड-19 महामारी से भी जूझना पड़ रहा था। मौजूदा हालात चीन, बांग्लादेश, भारत, जापान, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम में लाखों लोगों के विस्थापित होने की वजह बने हैं। उदाहरण स्वरूप मई 2020 में बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान अम्फन से भारत में 24 लाख लोग और बांग्लादेश में 25 लाख लोग विस्थापित हुए। रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसम की घटनाओं की आर्थिक कीमत बढ़ रही है और मौजूदा बुनियादी ढांचों का एक बड़ा हिस्सा अनेक जोखिमों का सामना कर रहे इलाकों में स्थित है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 पर जवाबी कार्रवाई के तहत गुरुवार को एक नई रणनीति पेश की है। इस रणनीति के जरिए वैश्विक महामारी से बचाने वाली वैक्सीन, परीक्षणों, जांच और उपचार की उपलब्धता में मौजूद असमानता का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन प्रयासों के लिए करीब 23 अरब 40 करोड़ डॉलर की धनराशि की जरूरत बताई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
WHO का कहना है कि COVID-19 महामारी का खात्मा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से चलाया जा रहा वैश्विक कार्यक्रम ACT एक्सेलरेटर दुनिया भर में संभावित 50 लाख मौतों और लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर के बराबर वैश्विक आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए बहुत अहम है। संगठन द्वारा गुरुवार को इस कार्यक्रम के लिए जारी रणनीतिक योजना और बजट के जरिए ऐसे देशों की मदद की जाएगी जो अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। ACT एक्सेलरेटर कार्यक्रम ने अपनी वैक्सीन उपलब्धता पहल कोवैक्स के जरिए अभी तक 144 देशों में 42.5 करोड़ से ज़्यादा खुराकें उपलब्ध कराई हैं। दुनिया भर में इस महामारी के मामलों में पिछले 2 महीनों में पहली बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गैब्रियसस ने कहा,
इट्स अनदर रिमाइंडर दैट द COVID-19 पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। द पैंडेमिक पर्सिस्ट्स इन लार्ज पार्ट बिकॉज इनइक्विटेबल एक्सेस टू टूल्स पर्सिस्ट्स।
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि ये एक और याद दहानी है कि महामारी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। महामारी इसलिए जारी है क्योंकि इसका मुकाबला करने वाले संसाधनों की उपलब्धता में विषमता बरकरार है। इस वायरस को केवल वैश्विक एकजुटता व सहयोग के जरिए ही हराया जा सकता है। WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस के शब्द।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक नए विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस संकट की वजह से इस साल के दौरान कामकाजी घंटों में जितना नुकसान हुआ है वो पहले जताए गए अनुमानों से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि विकसित और विकासशील देशों में पुनर्बहाली 2 अलग-अलग रास्तों पर अलग-अलग रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा हो रहा है। कुछ और विवरण के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन श्रम एजेंसी का अनुमान है कि वैश्विक महामारी के पहले के स्तर की तुलना में इस साल कामकाजी घंटों में 4.3% की गिरावट आएगी। यह 12.50 करोड़ पूर्णकालिक रोजगारों के बराबर है। इससे पहले जून महीने में जारी रिपोर्ट में 3.5% की गिरावट आने की संभावना जताई गई थी। क्षेत्रीय नजरिए से यूरोप और मध्य एशिया में कामकाजी घंटों में सबसे कम नुकसान दर्ज किया गया है, जिसके बाद एशिया और प्रशांत क्षेत्र है। रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच कामकाजी दुनिया में एक बड़ी दरार आकार ले रही है। अलग अलग हालात की एक प्रमुख वजह इन देशों में टीकाकरण की रफ्तार और आर्थिक राहत पैकेजों का इस्तेमाल है, जिससे पुनर्बहाली में काफी हद तक मदद मिली है। यूएन एजेंसी के अनुसार इन असंतुलनों को कोरोना वायरस वैक्सीन के वितरण में वैश्विक एकजुटता के जरिए तेजी से दूर किया जा सकता है। श्रम संगठन का मानना है कि यदि निम्न आय वाले देशों के लिए न्यायोचित ढंग से वैक्सीन मुहैया कराई जाती है तो कामकाजी घंटों में स्थिति बेहतर होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अफगानिस्तान में स्थिरता और स्थानीय जनता के बेहतर भविष्य के लिए देशों से एकजुटता का आह्वान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व और बढ़ते मानवीय संकट के बीच ईरान ने बुधवार को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने शिरकत की। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
खबरों के अनुसार तेहरान में हुए इस सम्मेलन में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि रूस और चीन के मंत्रियों ने वर्चुअल शिरकत की। महासचिव ने बैठक के दौरान अफगान संकट की विकरालता के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अफगानिस्तान एक विशाल मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र देशों से एक सुर में बोलने का आग्रह करते हुए कहा कि एकजुट तरीकों से ही ज़्यादा स्थिरता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मानवीय राहत प्रयासों को मजबूती देनी होगी। इस क्रम में उन्होंने विकराल अवरोधों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित व्यापक राहत अभियानों के बारे में जानकारी भी मुहैया कराई। उन्होंने बताया कि तालिबान के सहयोग से काम किया जा रहा है, जिन्होंने चरणबद्ध ढंग से उन इलाकों में जाने की अनुमति दी है जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने निवेदन किया था।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।